Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पॉजिटिविटी हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो व्यक्ति पॉजिटिव है उसका जीना सार्थक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिविटी जिस व्यक्ति के शरीर में होती है, जिसके अंग अंग में बहती है, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। उसकी कोई भी कोशिकाएं हमेशा स्वस्थ रहती हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम हसन जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी पे हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स पहले भी चलाए हैं, लेकिन ये चीज़ जिस पे आज बात कर रहे हैं हम, स्पेसिफिकली हेल्थ से रिलेटेड है ये, कि हेल्थ में पॉजिटिविटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए?
हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स पैरामीटर है
जी,
और उसमें कई फैक्टर हैं। डाइट है, एक्सरसाइज है, जीन्स हैं, इन्वायरमेंट है, इमोशंस हैं। ये सब फैक्टर मिलकर हेल्थ को बेटर करते हैं या डिटोरिएट करते हैं।
एग्जैक्टली
इसमें देखा गया, हमारे इमोशंस भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं।
बिल्कुल।
और उसी के कारण बीमारी ठीक जल्दी होती है या लेट होती है।
करेक्ट।
दोनों डिपेंड करता है हमारी खुद की स्थिति क्या है।
करेक्ट।
उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की हेल्थ को भी ठीक रखें।
True.
इंटरनल हेल्थ को भी ठीक रखें।
True.
और हमारी इंटरनल हेल्थ है हमारे थॉट्स, इमोशंस और हमारे एटीट्यूड। अगर इनको भी ठीक रखते हैं तो बीमारी जल्दी ठीक होगी और हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी।
जी।
हर फैक्टर का अपना इम्पोर्टेंट है
जी।
पर ये भी एक मेजर फैक्टर है जो हमारे पूरे साइकिल को अफेक्ट करता है।
पर कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट ही ऐसा बन जाता है, शायद मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स नेगेटिव हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, ऐसे में मैं अकेली कैसे एक पिलर बनूं जो पॉजिटिविटी का स्तंभ बने, ये कैसे होगा? ये मेरी पहल जो मैं करना चाहती हूँ ये कैसे होगी?
करेक्ट है, क्योंकि जब बीमारी आती है तो पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है।
करेक्ट।
और हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है तो और वातावरण हेवी हो जाता है। और उसमें अगर मैं एक पर्सन, इंडिविजुअल, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता हूँ
जी,
और उनको भी देता हूँ, जब मौका मिलता है मैं उनको वाइब्रेशन देता हूँ, तो वो वातावरण को भी चार्ज करेगा। जो हमने पहले भी कहा, वातावरण क्या है? एक एनर्जी का वायुमंडल है।
ओके।
पूरा एनर्जी का गेम चल रहा है, चाहे अंदर चाहे बाहर। और उसमें अगर मैं एनर्जी लेवल को बढ़ा रहा हूँ तो पूरा वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा
जी।
जो हम लोग कहते ही हैं, वृत्ति से वातावरण बनता है
जी।
तो अगर मेरी वृत्ति अच्छी रहेगी तो वातावरण भी परिवर्तन होगा। टाइम लगेगा पर पॉजिटिव होगा। एक व्यक्ति खराब करता है तो एक व्यक्ति पूरा क्रिएट भी कर सकता है पॉजिटिव को। अगर सब नेगेटिव भी हैं पर मैं अगर उसमें पॉजिटिव हूँ तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा।
ये चीज़ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि मैं कर बहुत रही हूँ, पॉजिटिविटी मेरी बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी पेशेंस लेवल को टेस्ट किया जाता है कई बार कि नेगेटिव लोग जो होते हैं आसपास के, वो ऐसा, अभी मैं इसमें एग्जांपल के थ्रू आपसे लेना चाहूँगी, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है ऑफिसेज में, आप देख लीजिए, मैं अकेली हूँ जो सत्य की राह पर चलती हूँ, बाकी सब कोई ना कोई तरीके से ब्राइब ले रहे होते हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कभी लेट आते हैं तो झूठ बोलते हैं, हर तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन मैं अकेली हूँ जो सत्य की राह पर चल रही हूँ। ऐसे सिचुएशन में मुझे बुली किया जाता है। ये बुली करने में मेरी पॉजिटिविटी को टेस्ट किया जा रहा है, इसमें क्या किया जाए ऐसे सिचुएशन में?
डेफिनेटली अगर हम अकेले हैं
जी
और 99 लोग नेगेटिव हैं,
करेक्ट,
और उन लोगों का बिहेवियर अलग अलग है
जी,
नेगेटिव है, तो मेरा कर्तव्य है अगर मुझे आगे बढ़ना ही है सत्य की राह पर, मैं रिएक्ट नहीं करूं पहला उन लोगों को देखकर और उन लोगों के बिहेवियर को देखकर, और बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूं उनसे, उनको करेक्ट नहीं करूं,
पर इंटरेक्शन तो मुझे करना होगा ना,
इंटरेक्शन करें
okay.
पर रिएक्ट नहीं करें
हाँ.
और अनवांटेड करेक्शन नहीं करें
okay.
मेरा अगर अंदर का परफॉर्मेंस बाहर आ रहा है, बिहेवियर बाहर आ रहा है, तो उनको और अच्छा लगता है, तंग करें
हाँ.
मैं उसको उस रिएक्शन को अपने फेस पर दिखा नहीं रहा हूँ,
करेक्ट,
तो तब उनका धीरे धीरे नेगेटिव बिहेवियर कम होगा, जब उसको लगता है
जी.
कि उसका असर आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है,
बिल्कुल.
और अगर वो इफेक्ट को हम दिखाएं नहीं तो वो धीरे धीरे कम होता, साथ ही साथ करेक्ट करें, बात करें, डायलॉग करें, पर ये नहीं करें कि हम रिएक्शन को दिखा रहे हैं और चार्ज करते रहें. जो मैंने बताया सॉल्यूशन केवल एक ही बचता है हर चीज़ में, कि हम उस वातावरण को चार्ज करें, घर से निकलने के पहले, जाने के पहले ऑफिस पे, तो उस समय 1 मिनट 2 मिनट पूरे वातावरण को एनर्जी दें
okay.
तो हो सकता है कि जो आत्माएं वहाँ जो व्यक्ति आ रहे हैं उनके अंदर का बिहेवियर कम होता जाए,
पर जरूरी भी नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी अगर मैं कुछ ना बोलूं, मैं चुप रहूं, मैं समझ रही हूं कि साइलेंस इज पावर, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि मेरे साइलेंस को कई बार कमजोरी समझ लिया जाता है. तो ऐसे सिचुएशन में जब सभी नेगेटिव हैं, सब मेरे आसपास है जो मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं हर जगह से, और मैं साइलेंट हूँ, तो कई बार मुझे कमजोर समझा जाता है और भी ज्यादा बुली किया जाता है. इस सिचुएशन में क्या करें?
अब हम लेते हैं सेकंड सॉल्यूशन,
करेक्ट.
आप बोल रहे हैं मैं उनको बोलूं,
करेक्ट,
आप बोलें. अब 99 लोग हैं और आप 1 हैं, और आप हर एक को बोल रहे हैं, एक दिन एक को, दूसरे को, तो क्या होगा? आपकी खुद की एनर्जी डाउन होती जाएगी,
करेक्ट,
क्योंकि एक व्यक्ति तो नहीं है जिसको आपको करेक्ट करना है,
लॉट ऑफ
99 है,
ट्रू.
तो अब 99 को तो आप करेक्ट कर नहीं सकते एक साथ, तो दो चीजें हैं, या बुलेट जो आ रही हैं, मैं भी बुलेट छोड़ूं, मैं भी गन लेकर जाऊं, वो छोड़ा है मैं भी छोड़ूं, निकालूं, बुलेट मारूं, एक ने मारा मैंने भी बोला, दूसरे ने बोला मैंने भी बोला, तो 99 का आपका रिस्पांस क्या हो गया? रिएक्टिव हो गया. 99 ने आपको बोला और आपने भी बोला,
करेक्ट,
तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो गई. अब दूसरा सॉल्यूशन है, मैं बुलेट प्रूफ आर्मर पहन कर जाऊं, तो बुलेट प्रूफ आर्मर का अर्थ है कि वो मार रहे हैं मेरे पर इफेक्ट नहीं आ रहा है. तो थोड़ा टाइम मैं वो करके देखूं, डायलॉग किया, पर बुलेट प्रूफ आर्मर भी पहन कर जाऊं, यानी मैं अपने इमोशंस को, संकल्पों को थोड़ा कंट्रोल करके जा रहा हूं, और कोई कुछ फेंक रहा है, बुलेट फेंक रहा है, मैं उसका असर मेरे ऊपर नहीं आ रहा है,
करेक्ट.
तो जो मैंने बताया ह्यूमन नेचर है, जब वो देखते हैं कि उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, तब वो शांत होना शुरू करते हैं. कितना चिल्लाएंगे तो नॉर्मल लेवल पर तो आएंगे.
True.
जैसे एंगर भी, कितना एंगर कर लोगे, 10 मिनट 15 मिनट, फिर क्या होगा?
लो
होगा.
Exactly.
ऐसे ही वो लोग भी कितने दिन तक करेंगे? एक लेवल तो आएगा ही, खुद ही थक जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे. तो दोनों मेथड के बीच में करते चलें,
ठीक है,
डायलॉग करते रहें. मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, कन्फ्लिक्ट में कभी भी डायलॉग को ख़त्म नहीं करें, पर हमें हाथ भी नहीं छोड़ना है. कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करना है,
करेक्ट,
टीम भी बनाना है,
करेक्ट.
तो टीम क्रिएट करते करते हम सबके संस्कारों को समझ गए जो भी हैं, और हर एक का बिहेवियर नेचर अलग अलग है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर आत्मा अलग अलग है. अब मैं सबका समझ गया कि इन लोगों का नेचर क्या है, और उनके अनुसार मैं बुलेट प्रूफ आर्मर पहन के आ रहा हूँ, तो उनका असर मेरे ऊपर कम होता जाएगा।
डॉक्टर साहब, अभी परिवार के अंदर में भी कई बार ऐसा होता है कि टकराव होते हैं।
करेक्ट।
अब वाइफ और हस्बैंड है और बच्चे हैं। वाइफ एंड हस्बैंड ऐसे सिचुएशन पे है कि शायद अभी डिवोर्स करने वाले हैं, इतनी बुरी हालत हो गई है, लेकिन बच्चे जो हैं ये चाहते हैं मम्मी पापा साथ में रहे। तो हमारे जो छोटे छोटे व्यूअर्स हैं हमारे, वो पूछना चाहेंगे आपसे कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए कि हमारे पेरेंट्स को साथ लेके आने में बच्चों का किस हद तक योगदान होगा, क्योंकि परिवार में वो लोग दोनों शायद बच्चों की वजह से ही साथ में हैं। जरूरी नहीं है, अगर बच्चे नहीं होते तो शायद वो दोनों अलग हो चुके होते हैं, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों को देख करके वो दोनों साथ में रह रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें करें जिससे उनके परिवार साथ में रहे, इमोशनली एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस रिमेंस पीस।
दोनों बच्चे कुछ कर सकते हैं, जैसे कोई भी पॉजिटिव चीज करें
जी,
जो दोनों का डायलॉग शुरू हो जाए और दोनों का अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाए। प्रॉब्लम कहाँ आता है मोस्टली, अगर दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और ईगो है तो वो टकराव आ रहा है। तो बच्चे वो चीज करें कि कहीं ना कहीं वो आपस में एग्री हो जाएं और कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें, वो लोग भी बैठे उनके साथ, दोनों को बिठाकर वो लोग भी बातें करें।
अच्छा, पूछ सकते हैं वो डायरेक्टली जाकर, क्यों नहीं, अथॉरिटी है उन्हें अपनी।
आजकल जैसे हम देख रहे हैं समाज एक ओपन होता जा रहा है,
करेक्ट,
फैमिली भी उसका पार्ट है,
करेक्ट,
वो भी ओपन होती जा रही है
जी।
तो हरेक को हरेक का अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जी,
पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की है तो बच्चों की भी है,
करेक्ट।
तो सब एक जब ज्वाइंट है, ज्वाइंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सब काम कर रहे हैं, तो हरेक का रोल इम्पोर्टेंट है और हरेक कोई पूछ भी सकता है और पूछना चाहिए, क्यों हम अंदर दबा कर रखें। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग कभी कभी अंदर ही दबा कर रख देते हैं और सोचते हैं क्यों पूछें, पर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम पूछें कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं वो तो होगा कि क्यों डाइवोर्स कर रहे हैं, क्यों कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो वहाँ रूट पर जाएंगे,
रूट कॉज को समझे। ओके,
हर एक प्रॉब्लम का एक रूट कॉज होता है
जी।
तो वो जैसे इसमें भी रहता, पुलिस वाले देखते हैं ना कि इसका मोटिव क्या था।
हाँ।
मोटिव को पकड़ते हैं तो उसको भी पकड़ लेते हैं।
रूट कॉज को समझेंगे तो सोल्यूशन निकालना इजी हो जाएगा।
आएगा ना
एग्जैक्टली
कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि क्या होता है वो प्रॉब्लम तक जाते ही नहीं और डिस्कशन करते रहते हैं और एक दूसरे को समझते ही नहीं और एक दूसरे का सुन नहीं रहे, तो वो बढ़ता जाता है गैप और गैप बड़ा बन जाता है। तो यहाँ सब मेंबर्स पूछ रहे हैं, बच्चे पूछें, पहले फादर से पूछें क्या प्रॉब्लम, फिर मदर से पूछें, तो एक कॉमन वो बनाए कोर्ट, वही कोर्ट क्रिएट कर दें, बच्चे उसके जज हों और बच्चे उनसे
पूछे,
तो कहीं ना कहीं सलूशन निकल आएगा।
ट्रू, क्योंकि बच्चों को जिस तरह से आपने एक नया पायदान दिया है आज, क्योंकि बच्चे शायद इतना उस लेवल पे उनको हम देखते नहीं है, हम सोचते हैं वो तो इमैच्योर है, लेकिन उनकी मैच्योरिटी का लेवल शायद हमारे पेरेंट्स से भी बढ़कर हो जाएगा अगर वो ऐसा कोर्टरूम क्रिएट करे।
ये प्रॉब्लम कहाँ जाते हैं डाइवोर्स के, उसको कहते हैं फैमिली कोर्ट,
करेक्ट,
वहाँ डिसीशन होते हैं। वो फैमिली कोर्ट तो बाहर की है, फैमिली कोर्ट एक अंदर है जो घर में है
जी।
तो घर वो समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि वो साथ में रह रहे हैं और उनको रियल पता है कि कहाँ प्रॉब्लम है,
करेक्ट।
तो वो जो डिसीशन देंगे दोनों को एग्री करना पड़ेगा, तो
nice.
फिर डिसीशन हो जाएगा।
वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल वे, और ज़रूर हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अभी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि घर में एक व्यक्ति बीमार है, शायद ऐसा बीमारी है जिससे शायद जैसे किसी किसी को पैरालिसिस पूरे बॉडी में हो जाता है, इस तरह की बीमारियां जिसमें वो व्यक्ति बेड से भी नहीं उठ सकते, अब उस घर का माहौल हमेशा भारी रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति बीमार है तो पूरे घर पर उसका असर पड़ता है। पूरा एनवायरनमेंट ही मेरा वैसा चल रहा होता है कि सभी लो रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पूरे घर के वाइब्रेशंस भी अच्छे हो जाए और उस वाइब्रेशंस के थ्रू शायद मेरे जो वो पेशेंट है वो भी जल्दी हील कर ले।
डेफिनेटली एक व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम है
जी,
और अगर मेन पर्सन है वो, तो उसका असर तो आएगा। उसमें यही कर सकते हैं, एक तो होप क्रिएट करके रखें। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हीलिंग में होप, आशा कि ठीक होना है, और उसको वो प्यार देते रहें, लव देते रहें, लव की कमी नहीं करें। क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है एक लेटा हुआ है और लोग फिर रूटीनली उससे उसको खाना पानी सब दे रहे हैं, पर मेन फैक्टर है जो उसको सपोर्ट चाहिए वो चाहिए प्यार का, और वो हर मेंबर उसको देता रहे। जब जिसको मौका मिले वहाँ जाकर बैठें, बात करें, उनकी थोड़ा अगर बोल पा रहे हैं तो सुने और टच करें। जैसे पहले भी बताया कि ह्यूमन टच सबसे इम्पोर्टेंट है, हाथ सिर पर, कंधों पर, तो ये क्या कर रहा है, एक एनर्जी दे रहा है, एक सिग्नल दे रहा है, और वो सिग्नल माइंड में जा रहा है और ब्रेन के द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया पर भी जा रहा है जहाँ प्रॉब्लम है, चाहे हाथ हैं, चाहे पाँव हैं, चाहे बैक है, और वो सिग्नल उसको कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, मेरे सब फैमिली मेंबर मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उसको लगता है कि लोगों ने मेरे को छोड़ दिया, अब मेरे को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, फिर डेथ जल्दी होती है। पर अगर सपोर्ट रहा, केयर रहा, शेयरिंग रहा, तो वो व्यक्ति ठीक भी होता है। इसी को कहते हैं मिरेकल। कभी कभी लोग कोमा में रहते हैं, काफ़ी टाइम तक कोमा में रहे और वापस आ गए, तो वो सिग्नल अननोइंगली अंदर जा रहा है, इनविजिबल वाइब्रेशन अंदर जा रहे हैं, वो फीलिंग आ रही है। तो वो टच को मेंटेन रखें और सपोर्ट करते रहें कि सब कुछ ठीक है, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं, तो वो शब्द भी अंदर हील करता रहेगा। क्योंकि शब्दों में भी, वर्ड्स में भी पावर है, और टच में भी पावर है, तो वाइब्रेशन भी क्रिएट करते रहें और वर्ड्स भी पॉजिटिव बोलते रहें। हर कोई व्यक्ति आकर कहे डोंट वरी, सब कुछ ठीक है, वी आर विथ यू, वी लव यू, और करें भी, गले भी लगाएं और टच भी करें, तो वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, मिरेकल होते हैं। जो मैंने पहले भी बताया, कैंसर के ऊपर डॉक्टर बनी सीगल ने काम किया,
हाँ जी,
और उनकी बुक है लॉ मेडिसिन मिरेकल, उस बुक में उन्होंने काफ़ी ऐसे इस तरह के इंसिडेंसेस दिए कि कैंसर पेशेंट कैसे ठीक हो गए, और उनमें एक मकसद क्रिएट करें, पर्पस क्रिएट करें। हर व्यक्ति के अंदर, हर आत्मा के अंदर एक पर्पस रहता है, अगर हम उसको एक्टिवेट कर दें कि तुम्हारे को ठीक होना है, और किस लिए ठीक होना है, इसलिए ठीक होना है, पर्पस है, बच्चे हैं, तो वो व्यक्ति जल्दी ठीक होगा। क्योंकि ये देखा गया, जब व्यक्ति के ऊपर प्रॉब्लम आता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, तो उसमें पावर आ जाता है और उसके सिग्नल सिस्टम काम करने लगते हैं। चाहे नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है
जी,
पर वो वाइब्रेशन काम कर रहा है।
ओके,
वाइब्रेशन ट्रांसप्लांट होते हैं, बिना किसी मीडियम के भी ट्रांस वो चले जाते हैं, वो एनर्जी है, उसको नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है
जी,
एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो सीधा वहाँ जाकर एक्ट करेगा। इसीलिए हीलिंग में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है मिरेकल होते हैं।
करेक्ट। तो मिरेकल्स की अभी अगर हम बात करें, कई बार मिरेकल्स जो होते हैं वो हम पर ही आधारित होते हैं कि हम खुद क्रिएट कर सकते हैं वो मिरेकल्स। आज आपने उसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हमें दिए। डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम किसी व्यक्ति को बोल नहीं सकते, अननेसेसरी नहीं है कि मैं इतनी एक्सप्रेसिव हूँ. आपने जैसे बोला कई बार जाकर के बोलूँ मैं कि क्या है फील करते हैं, तो कौन सा ऐसा जेस्चर है जिससे मैं दो व्यक्ति के बीच के टकराव को ख़त्म कर सकती हूँ अगर मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ तो. मैं चाहती हूँ कि मैं एफर्ट्स लेकर के इस रिलेशनशिप को बेटर करूँ लेकिन मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तब क्या करें?
मुझे याद आ रहा है दादी गुलजार का. अच्छा. एक बार उन्होंने, किसी ने पूछा गुस्सा कहाँ से आता है
जी?
और गुस्सा कहाँ से दिखता है? तो गुस्सा कहाँ से दिखता है? आंखों से.
करेक्ट.
चेहरे से और ओरल मुंह से जी. बोलते हैं, आंखों से दिखता है, पता लग जाता है कि ये व्यक्ति गुस्से में है.
ट्रू.
ऐसे ही जब हम बिना बोले प्यार दे रहे हैं वो भी हमारे आंखों से दिखता है.
True.
बच्चे भी देख रहे हैं आंखों में ही, आज गुस्सा है कि प्यार है. तो हमारा चेहरा, फेस हमारा रिफ्लेक्शन है बॉडी का, माइंड का. जो कुछ माइंड में हो रहा है वो चेहरे पर आ रहा है. तो मेरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ पर मेरा आई टू आई कॉन्टेक्ट है और वो वाइब्रेशन है अंदर का, फीलिंग है, इमोशन है, तो वो व्यक्ति को मिलता है चाहे मैं बोल नहीं रहा हूँ.
अच्छा. वो
दिखा नहीं रहा,
फील होगा वो चीज,
अनएक्सप्रेस है.
ओके.
पर बाहर से मेरा वो इमोशन अंदर वाला बाहर आ रहा है. क्योंकि तभी कहते हैं ना कि सबसे डीप इमोशन जो होता है प्यार, वो रिफ्लेक्ट होता है. जरूरी नहीं कि हम बोले पर वो रिफ्लेक्ट होता है, लोगों तक पहुँचता है. हमारी आँखें, हमारा बॉडी का हर सेल, हमारे जितने के बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो दे रहे हैं एनर्जी, हमेशा रिसीव होती है अगर डीप दे रहे हैं, अंदर से दे रहे हैं.
True.
तो वो फील करेगा, जरूर करेगा चाहे बोल नहीं रहे. आई टू आई कॉन्टेक्ट में भी होता है ना.
ओके.
आँखों से भी आता है ना.
हाँ. तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर चुप रहूं, मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन अगर मेरे हाव भाव जो है,
करेक्ट,
जिस तरह से मैं आपके साथ डील कर रही हूँ, जिस तरह से मैं फील कर रही हूँ, वो सब आप तक पहुँच रहा है. अगर मैं आपके साथ थोड़ा भी, अगर मैं उस पॉइंट पे हूँ कि मैं मन मुटाव को मिटाना चाहती हूँ, तो वो आपको पता चल जाएगा. आप ये कह रहे हैं?
करेक्ट.
ओके.
हम कहते ही है ना मन मुटाव.
हाँ.
मन मुटाव का अर्थ क्या हुआ? मन में कंफ्लिक्ट आया.
करेक्ट.
बाहर कंफ्लिक्ट नहीं है.
करेक्ट.
माइंड में कंफ्लिक्ट है. और मन में कंफ्लिक्ट का अर्थ क्या हुआ? संकल्पों में.
करेक्ट.
थॉट्स में वो है कंफ्लिक्ट. थॉट्स को अगर हम करेक्ट कर रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो वो मन का मुटाव कम होता,
कम हो जाएगा.
क्योंकि हर कंफ्लिक्ट यही है ना, हमारे अंदर ही है ना.
True.
और उसको एनर्जी कम है इसलिए वो कंफ्लिक्ट कर रहा है. उसको क्लियरिटी नहीं है इसलिए सलूशन नहीं आ रहा. हम उसको क्या कर रहे हैं? एनर्जी देकर उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे हैं. तो उसका डिसीशन खुद ही आएगा, फीलिंग आएगी कि मैं रॉन्ग हूँ, मैं गलत हूँ. तो वो अपने को करेक्ट कर लेगा. हर व्यक्ति को पता रहता है वो कहाँ गलत है, पर ईगो के कारण वो ब्लॉक होता है.
True.
और वो एक्सेप्ट नहीं करता है, डिनाई करता है. और जब यहाँ एक्सेप्ट करेगा तो खुद ही सोल्यूशन लाएगा. सोल्यूशन भी है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी अंदर ही है. सोल्यूशन बाहर नहीं, अंदर ही है.
तो आप यही कहना चाह
रहे हैं? हम उसको मदद कर रहे हैं.
बिल्कुल.
हेल्प कर रहे हैं.
बिल्कुल.
एनर्जी उसकी लेवल को बढ़ा रहे हैं. जो हम लोग कहते हैं सेल्फ स्टीम को बढ़ा रहे हैं, उसकी सेल्फ वर्थ को बढ़ा रहे हैं. तो जैसे ही वो बढ़ेगा, उसकी लेवल बढ़ेगी, तो सोल्यूशन आ जाएगा.
Okay.
कहीं ना कहीं वो अपने को लो फील कर रहा है ना.
Correct.
इंफीरियर फील कर रहा है तो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं.
कई बार सुपीरियर भी फील कर रहे होते हैं. सामने वाला बंदा मुझे मुझसे, जैसे अगर आज सिंपल एक एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, वाइफ एंड हस्बैंड, अगेन हस्बैंड के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है, तो हस्बैंड सोचेगा मैं क्यों पहल करूँ, या वाइफ सोचेगी मैं क्यों पहल करूँ. तो पहल ना करने के चक्कर में शायद दोनों इंट्रोवर्ट है.
करेक्ट.
तो यही सिचुएशन में शायद कई बार ऐसा होता है कि ईगो एक बहुत बड़ा इशू आता है. तो इस ईगो को क्या करें हम, क्योंकि ईगो तो हर व्यक्ति के अंदर है, छोटे से बच्चे के अंदर भी आज ईगो है. तो ईगो के साथ कैसे डील करें?
जो आपने कहा सलूशन, प्रॉब्लम वही रहता है, पहल कौन करे.
सही बात है.
दोनों को मालूम है.
जी।
पर पहल करने में हम बैक हो जाते हैं।
करेक्ट।
और आता क्या है उसमें ब्लॉकेज, ईगो का ही आता है। मेल का अपना ईगो है, फीमेल
का अपना ईगो है।
कहीं ना कहीं हमें एक को थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे एक्सेप्टेंस से वो प्रॉब्लम कम हो रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, उसमें मेरा कुछ कम नहीं हो रहा है।
करेक्ट।
क्योंकि फैमिली है तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी।
बिल्कुल।
उसके काम।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें सीखी हमने, जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि अगर अपने मन मुटाव को मिटाना है तो सबसे पहले पहल मुझे करनी होगी, सामने वाले व्यक्ति को नहीं। अगर मैं खुद पहल करूंगी तो फिर धीरे धीरे सभी जो मन मुटाव है वो अपने आप सुलझते जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं हमारे रिश्तों की, रिश्ते ये एक नाजुक डोर की तरह है। आज हमने बहुत सारे तरीके सीखे जिससे हमारे रिश्ते सुलझ सकते हैं। आप ये मत समझिए कि कोई रिश्ते में अगर टकराव है तो वह अंत है, वो अंत नहीं है, वहीं से शुरुआत है। शुरुआत है एक बेहतर भविष्य की और एक बेहतर रिश्ते की। उसकी पहल कौन करेगा? वो सामने वाला व्यक्ति नहीं करेगा, वो आपको ही खुद करना होगा। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो रिश्ते सुलझ सकेंगे, और फिर आप देखिएगा आपके सारे रिश्ते इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि एक फूल की तरह बन जाएंगे जो सारे चारों ओर खुशबू ही फैलाएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति।